प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे
शांति, ओम शांति। सब फ्रेश है? ओके। आज हमारे बीच में सुशील भाई जी हैं, जो 1995 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑलराउंडर वैसे तो है भाई जी, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मैंने उनको कभी देखा ना हो। कल हमारी पार्टी चल रही थी, तभी भी वो सर्विंग में थे, अगर किसी ने नोटिस किया होगा। ऐसे वो पब्लिक रिलेशन संभालते हैं, साथ साथ में मीडिया एंड साइट सीइंग। तो बाबा के घर में हर एक की विशेषताएं कहाँ ना कहाँ लग जाती हैं। और अभी हम जो गाना सुन रहे थे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन करने की विधि क्या है और वो मिलन हम कैसे करें और उससे प्राप्ति क्या होगी, इन टॉपिक पर भाई जी हमें समझाएंगे। और भाई जी बहुत अच्छे क्रिएटिव क्लासेस भी कराते हैं, मैं भी उनके क्लासेस कभी कभी सुनती हूँ और काफी प्रेरणाएं उनसे हमें मिलती हैं। तो सुनते हैं सुशील भाई जी से।
ओम शांति। पहले 270 आत्मा और परमात्मा का सभी ने किया है, आज तीसरा सत्र है दोनों का कनेक्शन। किसी भी कार्य को हम अपने हाथ में लेते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हम अपनी क्षमता को परखते हैं कि हम इस कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्वयं पर फेथ होता है, निश्चय होता है, यदि हम इस कार्य को करने की हमारे में क्षमता है, ताकत है, सामर्थ्य है और विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से उस कर्म में सफलता अवश्य मिलती है। अगर विधि पूर्वक करते हैं तो वहां हमें सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि सफलता हमारे पीछे स्वयं आती है अगर हमें उसका पूरा कार्य का प्लान अच्छी तरह से मालूम है। मंजिल हमको जो तय करनी है उस मंजिल को तय करने के रास्ते में कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती हैं, उन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, कहां कहां हमको हेल्प लेनी पड़ सकती है, पहले से अगर पूरा प्लान हमारी बुद्धि में है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। हर कार्य संभव है, बल्कि उस कार्य को सहज रूप से भी हम पूरा कर सकते हैं। मन में एक तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए उस कार्य को पूरा करने की। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो इस राजयोग के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है निश्चय। भगवान पर निश्चय तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले स्वयं पर निश्चय। जितना हमारा स्वयं पर निश्चय पक्का होगा, मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा तो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो स्वतः याद आएगा। जैसे अगर मुझे मालूम है कि मैं फलाने का बच्चा हूं तो मुझे पिता को याद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः याद जुड़ी हुई है। जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आएगा तो पिता की स्मृति स्वतः आएगी। इसी तरह से इस राजयोग के मार्ग पर सबसे पहले हमें स्वयं पर निश्चय चाहिए। इसलिए पहला लेसन यही पक्का कराया जाता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब आत्मा का लेसन तो पढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हमको अनुभूति होना आवश्यक है। एक है केवल इन्फॉर्मेशन, सूचना कि हाँ आत्मा तो होती है, जो संसार में भी ज्ञान है, शास्त्रों में भी है, छोटे बच्चे को पूछेंगे वो भी बताएगा। लेकिन दूसरा स्टेप है उसका रियलाइजेशन, उसकी महसूसता। जब तक हम स्वयं को, स्वयं का जो वास्तविक अस्तित्व है आत्मा का, उसको हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं, स्पर्श नहीं करते, महसूस नहीं करते, रियलाइजेशन नहीं करते, तब तक अगला स्टेप हमारा कमजोर होगा। तो सबसे पहले हमें स्वयं को स्पर्श करने का अभ्यास करना है। तो आत्मा की रियलाइजेशन कैसे करेंगे? पहले दिन में लेसन तो सुन लिया सभी ने, तो कैसे उसकी फीलिंग करें हमको? क्यों नहीं उसकी फीलिंग आती है? क्या हम सोचें मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और ये बॉडी से डिटैच हो जाऊं, तुरंत उसकी महसूसता आ जाए? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्यों नहीं आती उसकी, बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। अभी मैं अपने शरीर की याद करना पड़ता है, नहीं, नेचुरल हो गया है, एक स्वभावी बन गया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन चिंतन शरीर का ही करते रहते हैं, पूरा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में ही है, देह की स्मृतियां हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। किसी को याद करते हैं तो उसके देह की आकृति हमारे इर्द गिर्द घूमने लगती है। अपनी देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा दिन हमारा चिंतन चलता रहता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भागदौड़ करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, या अपने देह को सजाने संवारने में लगे हुए हैं पूरा दिन, कैसे मैं सबसे अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं, अपने श्रृंगार रखते हैं, देह की कितनी सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, देह को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कितना अटेंशन रखते हैं, परहेज करते हैं, खान पान की शुद्धि रखते हैं। तो सारा दिन हमारा चिंतन देह का ही चल रहा है, या दूसरे की देह के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो मन में रिकॉर्डिंग कौन सी हो रही है? जैसे भी बाबू जी आए हैं तो कईयों का ध्यान तुरंत चला गया उधर, क्यों? आदत पड़ गई है। जैसे बहन जी ने भी रात को, इंदिरा बहन जी ने बताया था ना, आदत पड़ गई है हमारी। तो ऐसे सबसे पहले हमें स्वयं को झांकने का प्रयास करना है। इन आंखों से हमने बाहर बहुत कुछ देख लिया, संसार को देख लिया, देहधारियों को देख लिया, देह की वस्तुओं को भी देख लिया, उन सबकी भी जरूरत है, उनके बिना भी हमारा जीवन अधूरा है, वो तो है ही है। लेकिन जहां हमें स्वयं को झांकने की आवश्यकता है समय अनुसार, तो हमें थोड़ा स्वयं के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो पहले स्वयं पर निश्चय चाहिए कि सचमुच आई एम पीसफुल सोल, और ये कहने मात्र नहीं कि पीसफुल सोल हूं, वास्तव में आत्मा में सचमुच बहुत शांति समाई हुई है, वो शांति से ऑलमोस्ट भरपूर ही भरपूर है। आगे थोड़ा सा कुछ आवरण आ गया है, कुछ संबंधों का आवरण, हमारे अपने ही पुराने संस्कारों का आवरण, विचारों का आवरण, अनेक प्रकार के पर्दे आत्मा के अंदर आगे हैं, इसलिए हम शिप गए हैं उसके पीछे। तो स्वयं को रियलाइजेशन करना है, महसूस करना है, तो उनको हटाने के लिए चिंतन को बढ़ाने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, निश्चय करने की आवश्यकता है। तो योग का जो पहला स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं के ऊपर विश्वास, निश्चय, एक दृढ़ निश्चय, और जो बताया कि सचमुच आत्मा शांति से भरपूर है। तो आप में से कोई ऐसा बैठा है जो 24 घंटे गुस्सा करता है? है कोई ऐसे? किसी में भी इतनी ताकत नहीं है संसार में जो 24 घंटे गुस्सा कर पाए, है किसी में ताकत? किसी में भी नहीं है, लेकिन 24 घंटे शांति में रहने की ताकत है। अगर गुस्सा आता भी है तो कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। अब 24 घंटे में से 23 घंटे तो शांति में रहे ना, एक ही घंटा गुस्सा आया ना। लेकिन हमने किसी को अगर गुस्सा करते देख लिया तो हमारे मन में उसकी तस्वीर, उसकी छवि कैसी बन जाती है कि फलाना व्यक्ति ना बहुत गुस्सा करता है, हम उसके 1 घंटे को देख रहे हैं, 23 घंटे वो शांति में रहा, हम वो नहीं देख रहे हैं उसको। हम केवल सफेद कपड़े पर हमको जो काला दाग दिखाई दे रहा है ना, वो ही दिखाई दे रहा है, इतना सफेद कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है काली दाग की तरफ, अर्थात दूसरे के अवगुणों को देखने की हमारी आदत पड़ गई है, दूसरे की कमी कमजोरियों को हमने कहां, जो डस्टबिन में फेंकने वाली चीज है उसको कहां रख दिया, अपने अंदर रिकॉर्ड कर दिया, और जो रिकॉर्ड कर दिया वो ही तो मुख से प्ले होगा, वो ही मन हमारा सोचेगा, वो ही तस्वीरें हमारे हमने अपने मन बुद्धि में बिठा ली है। इसलिए यहां तो बाबा कहते हैं गुण ग्राहक बनो, गुण देखो, गुण चोर बनो, चोरी करनी है तो दूसरों के गुणों की चोरी करो। दूसरों को देखें हम तो उनको, उनसे हमको कुछ लेने की जरूरत ना पड़े, स्वतः ही उनसे 2-4 गुण हम ग्रहण कर लें। तो वास्तव में आत्मा सचमुच शांति से भरपूर है। आत्मा के पहले दिन में 7 गुण बताए होंगे सभी को, है ना, कौन कौन से थे? शांति, पवित्रता, ज्ञान। देखो जो हमारी ओरिजिनल संपदा है, प्रॉपर्टी है, उसको याद करने में हमको थोड़ा टाइम लगता है, लगना नहीं चाहिए। अब जिस चीज को आप रसोई में रोज यूज करते हैं तो उसको ढूंढने में प्रयास करना पड़ता है, आंखें बंद करके फटाफट सपने में बता सकते हैं वहां पड़ी है। तो जो हमारी ओरिजिनल खुराक है, आत्मा के मूल्य हैं, उनको याद करने में हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, वो तो तुरंत होना चाहिए। तो कब सुनाया था? परसों सुनाया था। 48 घंटे बीत गए हैं और वो 7 ही अक्षर हैं। तो इन 7 अक्षर हमने बुद्धि में नहीं रखे, और दूसरी 700 बातें बुद्धि में हमने रख ली होंगी कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको समय पर आना चाहिए था। तो दूसरी बातों को मैंने कैसे तवज्जो दे दी है? तो मन हमारा इतना मलिन हो चुका हुआ है कि अच्छी बातों को उसमें बिठाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत में बड़ा सुख समाया हुआ है। मेहनत शब्द सुनने से ये नहीं सोचो कि हमको बड़ा कठिन है, नहीं। यहां कि जो भी इस ज्ञान मार्ग के, राज्यों के मार्ग पर चलने के जो असंभव जैसे शब्द प्रतीत होते हैं, उनमें बड़ा सुख समाया हुआ है, एक प्रेम पूर्वक पीड़ा है, वो प्रभु प्रेम की पीड़ा है। आत्मा जितना उस प्रेम में पीड़ित होगी, जितना हम प्रभु प्रेम में भरपूर होते जाएंगे, उतना आत्मा तृप्त होती जाएगी। फिर अनेक प्रकार की दूसरों में विसंगतियां, कमजोरियां दिखाई देते हुए भी हम उनको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होने के सफर पर निकल चुकी है। महसूस कर लिया, स्वाद चख लिया है कि मैं सचमुच शांति से भरपूर आत्मा हूं, पवित्रता से भरपूर आत्मा हूं, ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। लेकिन यह तो हमारा पहला स्टेप है कि ये 7 शब्द, जो 7 गुण है, ज्ञान, योग, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शक्ति, एक है केवल इनको हमको पहले, जैसे पहली में बच्चा क्लास में जाता है तो पहले उसको तो शब्द याद करने ही पड़ते हैं, उनके स्वरूप में वो टिक नहीं पाता जल्दी, उसको बार बार दिखाया जाता है ये एप्पल है, ये हाथी है, फिर उसके मन में तस्वीर बनती है, पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के, उसके स्वभाव के प्रति बताते हैं, तो उस बच्चे का फिर उनके प्रति प्यार बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही जब हमको ये 7 गुण बताए गए हैं, उनके ऊपर फिर आगे चिंतन करना पड़ेगा कि अगर मैं सचमुच शांत स्वरूप आत्मा हूं तो क्यों शांत स्वरूप हूं, ये शांति का स्रोत कहां से आ रहा है, मेरे में अशांति आई कहां से, आवरण क्यों आ गया है, अगर अशांत में रहता हूं तो शांति को कैसे मैं बढ़ाऊं, शांति से भरपूर कैसे हूं। तो 7 गुणों को आगे चिंतन करना है, क्योंकि जहां हम आए हैं ये यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाई, और सबसे एनर्जेटिक लाइफ कौन सी होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है। कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, सबसे बेस्ट लाइफ है, डायमंड लाइफ है। हमें बचपन में पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हमारा गांव एक गांव में है, इंटीरियर है, तो एक सामान्य वर्ग से थे, तो पढ़ने का बहुत शौक होता था, तो हमारे एग्जाम भी हो जाते थे, एग्जाम के बाद भी हम पढ़ते ही रहते थे। तो पिताजी हमको कहते थे कि आपको ना मैं बहुत पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन उतना घर में इतना परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी जो आगे पढ़ाई पढ़ सकते थे। तो 10th क्लास के बाद हमको बोला कि अभी आप सर्विस करनी है, तो हमको ना अंदर में बहुत टीस, अंदर में दुख पैदा हो गया कि मेरी पढ़ाई छूट गई, अभी नौकरी तो करने की हमारी ये नहीं थी, हमको बचपन से था कि हम एक अच्छा टीचर बनेंगे पढ़ाई पढ़ के अच्छी तरह से। तो खैर अभी बड़ों की आज्ञा का पालन पिताजी को जबरदस्ती तो कह नहीं सकते, तो हमको नौकरी में डाल दिया उन्होंने। तो ऐसे प्राइवेट ITI डिप्लोमा किया हमने, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में TV मैकेनिक का काम सीख लिया और करने लगे, लेकिन अंदर में एक टीस खाती रहती थी। अच्छा पैसा कमाने लग पड़े, खूब पैसा भी कमाया, लेकिन वो पढ़ाई का जो अंदर में दर्द था ना, वो हमेशा दुख देता रहता था, और पैसा भी खूब पाया, पैसा कमाने से जो एक संतुष्टता होनी चाहिए थी बिल्कुल नहीं होती थी। हम पूरे परिवार में सबसे आगे भी निकल गए, लेकिन अंदर में बड़ा दर्द रहता था कि मन पैसा कमाने से संतुष्टता है ही नहीं। तो पढ़ाई की बड़ी टीस रहती थी, फिर भी जैसे तैसे हमने हायर सेकेंडरी भी की प्राइवेट देकर। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला और पता चला कि जिंदगी भर हमको पढ़ते रहना है, वो इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि बात मत पूछो। तो हमेशा हमको सीखने की ललक हमेशा बनाए रखनी है। अगर हमने ये सोच लिया कि मधुबन में आ गए, तीन दिन लेक्चर सुन लिए, ये हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी से स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई है हमारी, और स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? हमेशा हाथ में कापी पेंसिल, जिसको बाबा यहां कहते हैं कच्छ में कुरम, कच्छ में बगल, बगल में माना कुरम माना किताब। हमेशा कापी पेंसिल हमको हाथ में रखनी है। पता नहीं कौन से समय में भगवान हमको ऐसी टचिंग करा देगा कि जिस टचिंग से हमारी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पता नहीं किसके मुख से भगवान ऐसे शब्द निकलवाएगा कि उससे हमारे जीवन ही बदल जाएगा। और सचमुच हमने देखा हुआ जीवन में, कोई छोटा बच्चा होता है उसके मुख से भी ऐसे कई बार शब्द निकल जाते हैं जिसने जो आज तक इतने ज्ञानियों के मुख से भी हमने नहीं सुने होंगे। कई बार उन बच्चों के जीवन में इतनी रॉयल्टी होती है, उनके देखना, उनका बोलना, चलना, उठना इतना रॉयल होता है कि जो बड़ा बड़ा में नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है ये। तो सबसे पहला जो बताया, निश्चय, स्वयं पर निश्चय, और निश्चय का उसका प्रयास करना है, अभ्यास करना है, उसका बार बार प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। हमारे जो ब्रह्मा बाबा नंबर वन गॉडली स्टूडेंट, जिन्होंने कभी मुरली मिस नहीं की अंत तक, तो हम भी तो उसी घराने के बच्चे हैं। आप यहां आए हैं तो ऐसे नहीं आ गए, आप बहुत ऊंच कुल की आत्माएं हैं। एक उस साधारण संस्था में नहीं बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं आप। यहां आना कम बात नहीं है, कईयों को दीदियों ने यहां आने के लिए तैयार किया होगा, अंत तक प्रयास किया होगा। तो दीदियों को जो टचिंग हुई किसके माध्यम से? भगवान ने दीदियों के माध्यम से आपको तैयार करके यहां पहुंचाया है, कोई साधारण बात नहीं है। तो इस पढ़ाई को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, जीवन जीना है तो एक स्टूडेंट लाइफ की तरह जीना है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में पहला जो पहले दिन का है लेसन कौन सा, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने आने के बाद भी कितना बचपन में अभ्यास किया, इस ब्राह्मण जीवन के बचपन में 60 ईयर की एज में दीवारें भर दी बाबा ने, मैं आत्मा हूं। जो उनके घर वाले थे सभी उनके बारे में, यशोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है, आत्मा है। तो हमको ये अभ्यास करना है, तो लिखना है घर में भी, क्योंकि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, उसको पकड़ना आसान काम नहीं है। मन की तुलना किसके किसके साथ की जाती है पता है? एक बंदर होता है, बंदर कितना चंचल होता है, कभी इस डाले पर कभी उस डाले पर, कभी उस डाले पर कभी उस डाले पर। अब उस बंदर को दो चार मधुमक्खियां लड़ जाएं, मधुमक्खियां डंग मार दें, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी? और चंचल हो जाएगा। और ऊपर से एक शराब की बोतल पी ले और कैसा हो जाएगा वो? और ऊपर से उसमें 5-6 भूत आत्माएं प्रवेश कर जाएं तो कैसा हो जाएगा? कितना चंचल हो जाएगा। तो मन ना ऐसे हो गया है, अब इसको कंट्रोल करना है, तो कोई मनुष्य करा सकता है? इसलिए अंत में भगवान को आना पड़ता है। इतना मन हमारा बिगड़ गया है, मन के टुकड़े टुकड़े करके रखे हुए हैं, उन सब टुकड़ों को जोड़ने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ता है, कोई मनुष्य नहीं जोड़ सकता है। इसलिए यहां विधि पूर्वक जो भी हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलनी मिलनी है, क्योंकि भगवान आके हमको पहले वरदान देते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान का बनने के बाद चाहे जीवन में आंधी आए तूफान आए, कहते हैं ना जिसका साथी भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। तो जैसे हम इस ब्राह्मण जीवन में कदम रखते हैं तो सारी मन की विकृतियां बाहर निकलने लगेंगी, अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो पहले जीवन में कभी आए भी नहीं होंगे, इतने खराब खराब विचार आने लग जाएंगे, क्योंकि दवाई खा ली है, बीमारी तो बाहर निकलेगी निकलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कभी घबराना नहीं है, इस ज्ञान मार्ग में कैसे भी विचार आए घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना, हार्ट डिसहार्टेड नहीं होना है। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, क्या वो रुकते हैं? बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस राज्यों के मार्ग पर भी हमको आगे बढ़ने के लिए शुरू शुरू में बाबा तो हमको बहुत पालना करेगा, जैसे मां होती है बच्चे की पालना करती है तब तक जब तक वो चलने योग्य नहीं होता है, उसकी मालिश पालिश करेगी, उसको समय पर खाना खिला देगी, दूध पिलाएगी, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगी, जैसे बच्चा 5-7 साल का हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर देगी, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने पांव पर चलेगा। अब बड़ा होने के बाद बच्चा कहे कि मां मेरी मालिश करो, तो मां मालिश करेगी, मां फिर थप्पड़ मारेगी उसको। तो बाबा भी यहां आकर हमारी पालना करता है। 2-3 साल तो हमको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे चलेंगे तो हमारे ही अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब हैं, अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार जो अंदर में रिकॉर्डिंग है, अनेक प्रकार के विचार हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। और वो कब निकलेंगे? जब हम योग में बैठेंगे तब। वैसे नहीं निकलेंगे वो, जब जैसे हमको कहा जाएगा अब योग में बैठो तो भी आएगा, मन उधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसी समय निकलेंगे वो। लेकिन उसमें घबराना नहीं है। अब उसमें निकलने की युक्ति चाहिए हमको। तो पहले से हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें, इतना ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रख लें कि जब भी अगर कोई ऐसे विचारों के शत्रु अंदर में आते हैं तो हम 10 दूसरे पॉजिटिव विचार सामने खड़े कर दें। इसलिए बाबा हमको यहां सोमान में स्थित रहना सिखाते हैं, जो आत्मा का ओरिजिनल मूल नेचर है कि आत्मा पवित्र आत्मा है। तो जब भी ऐसे वैसे विचार आए तो बार बार रियलाइज करना है, बार बार मन में दोहराना है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्रता मेरा निजी संस्कार है, पवित्रता मेरी संपत्ति है, पवित्रता मेरी नेचर है, पवित्रता मेरे संस्कार हैं, मैं मस्तक में चमकती हुई एक पवित्र मणि हूं, निरंतर मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं, पवित्रता की तरंगे फैलती जा रही हैं, क्योंकि स्वयं पवित्रता का सागर मेरे सिर के ऊपर छत्रछाया बनकर इस धरा पर आया हुआ है, केवल वो मेरे लिए आया हुआ है। तो एक एक के गुण के ऊपर अपनी एक कमेंट्री तैयार करनी है, उस पर चिंतन करना है, उस पर लिखना है कुछ, क्योंकि अगर हमने मन को काम नहीं दिया तो मन फिर उसी बंदर की तरह काम करेगा, जिसने शराब पी रखी है, जिसको मधुमक्खियों ने काटा हुआ है और जिसके अंदर भूत आत्मा में प्रवेश है 5-10, उसी तरह मन काम करेगा। तो हमको दिशा देनी है मन को, क्योंकि मन असोच हो नहीं सकता है, मन तो कोई ना कोई विचार करेगा ही करेगा, लेकिन हमको दिशा देनी है। बाबा हमको क्या करते हैं, जीवन को परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं कि तुमको बच्चे रहने तो घर गृहस्थ में ही है, घर बार को तो छोड़ना नहीं है, माँ बाप का फर्ज ये होता है घर को जोड़ना ना के तोड़ना। तो बाबा तो यहां हमको ये शिक्षा देते नहीं कि घर को छोड़ के आ जाओ, नहीं, यहां तो बाबा ने हमारी ऐसी मानसिकता बना दी है कि पूरा संसार ही अपना हो गया, अभी कोई हमारा रिश्तेदार 2-4 नहीं है, अभी पूरे संसार ही अपना हो गया अभी। इसलिए आप यहां देखते होंगे कोई भी आता है, जितने भी भाई बहनों को आप देख रहे, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, सबको बड़े प्यार से मिल रहे हैं, स्नेह से मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, का गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, क्योंकि स्वयं प्यार का सागर इस धरा पर अवतरित हो गया है। उसने यहां की आत्माओं को इतना प्यार से भर दिया, इतना प्यार से भर दिया कि जो उनके अंदर में है वही तो बांटेंगे। तो हमें स्वयं को भी इतना परमात्म प्यार भरने का यह मौका मिला हुआ है। इसलिए जिस स्थान पर आप आए हैं उस स्थान के महत्व को समझकर अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लेना है कि योग हमको लगाना ना पड़े, योग स्वतः लग जाए। तो योग की मुख्य 4 बातें होती हैं जहां हमारा योग अपने आप लगता है। जैसे योग तो संसार में जिसने नहीं सीखा उसका भी लगता है, योग अर्थात दूसरे साधारण शब्दों में कहें योग अर्थात ध्यान। तो ध्यान तो हमारा कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, चाहे परिवार में लगा हुआ है, चाहे बिजनेस में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ध्यान लगा ही रहता है। तो यहां भी ध्यान ही तो करना है, और यहां सहज ध्यान है, यहां ज्ञान युक्त ध्यान है, समझ के साथ है, अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो ध्यान हमारा कहां जाता है, जहां हमारा किसी के साथ परिचय होता है, पहचान होती है, वहां हमारा ध्यान जाता है। लेकिन वहां ध्यान उतना नहीं जाता है जितना दूसरा संबंधों में जाता है, जिसके साथ गहरा संबंध है वहां हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। और ध्यान कहां जाता है, जहां हमारा स्नेह होता है वहां ध्यान जाता है। और ध्यान कहां जाता है, जहां हमें कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है, वहां ध्यान जाता है। तो हमें परिचय किसका मिला, पहले दिन स्वयं का परिचय मिला, मैं कौन हूं, परमात्मा की संतान हूं, ईश्वर संतान हूं, स्वयं ईश्वर की डायरेक्ट रचना हूं, उसने हमको इस संसार में चुना है, उसने स्वयं आपको यहां लेके आया, मुंबई से आप यहां आए हैं, कौन लेके आया आपको, उसी की कृपा है। क्यों उसकी कृपा हुई? क्योंकि आपने, आपका उससे बहुत प्यार है। कौन से जन्मों में पता नहीं ऐसी इतनी भक्ति की होगी कि वो भक्ति का फल अभी आके मिला है, उसने आपको अपनी गोद में आके बिठा लिया है। तो परिचय हो गया ना, भगवान का परिचय हो गया कि हमें स्वयं का परिचय करा दिया कि हम इतनी ऊंच कुल की महान आत्माएं हैं, देवी कुल की आत्माएं हैं। अब ये याद आएगा तो संस्कार भी वही मर्ज होने लगेंगे, देवकुल के संस्कार। देवी संस्कार कौन से हैं? किसी को दुख देने के? नहीं, सबको सुख देने के हैं, सबको शांति देने के संस्कार हैं, सबको उमंग सा देने के संस्कार हैं। दैवी संस्कार कौन से हैं? सदा हर्षित रहने के संस्कार हैं, अनेकों को प्राप्तियां, दूसरों को सहारा देने के संस्कार हैं। तो उसने दैवी संस्कारों से हमारा पोषण कर दिया, हमारी तो जैसे आंख खोल दिया उसने, ज्ञान का नेत्र खोल दिया। तो सबसे पहले हमें उसका परिचय हो गया। जिसके साथ परिचय होता है तो उसकी याद स्वतः आती है। किसी मिनिस्टर के साथ आपकी पहचान है, फोटो या केवल एक बार ही फोटो खींचिए तो जिस जो भी देखेगा उसके साथ आपकी फोटो को तो क्या बोलेगा, अच्छा आपकी पहचान किसके साथ है? तो हमारी परिचय, हमारी पहचान किसके साथ होगी? अभी भगवान के साथ होगी, बाबा के साथ होगी। तो रोज एक तस्वीर रख लेनी, अपने हाथों से बनानी है ड्राइंग, है ना, एक तरफ मैं बैठा हूं, दूसरी तरफ बाबा बैठा हुआ है। कैसा? निराकार के रूप में है कि मैं आत्मा हूं और बाजू में शिव बाबा बैठा हुआ है ना। ये फिर एक आकारी तस्वीर बनानी है, क्योंकि खुद को क्रिएटिव माइंड बना, जैसे बेंजी ने बोला क्रिएटिव, स्वयं को क्रिएटिव बनाना बड़ा जरूरी है, नवीनता चाहिए जीवन में, है ना। तो दूसरी तस्वीर बना सकते हैं, एक तरफ बाबा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मम्मा बैठी, बीच में मैं बैठा हुआ हूं, और रूप में शिव बाबा की तस्वीर बना दी। और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, स्वयं का सशक्तिकरण करने के लिए, स्वयं को शक्तिशाली, स्वयं को एक नई ऊर्जा से भरपूर करने के लिए। और जितना हम स्वयं को ऐसे नई ऊर्जा से भरेंगे तो दूसरों को भरने के लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है, हमारा चलता फिरता जीवन एक बोलती तस्वीर हो जाएगा। इसलिए आप यहां मधुबन में आए हैं तो सबको आप देख रहे होंगे, किसी के चेहरे पर कोई डिप्रेशन देखा गई? देखा गई? निश्चिंत है, सभी सबका जेब खाली है, सब समर्पित है, यहां किसी का बैलेंस नहीं है, लेकिन निश्चिंत जीवन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संबंध उनसे साथ जोड़ दिया, भगवान का परिचय हो गया उनको। तो दूसरी बात है संबंध जोड़ना उससे। भक्ति मार्ग में तो हमने कहा था तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, बंधु सखा, लेकिन प्रैक्टिकल में कहां गया? वो तो केवल कहने में आता था, लेकिन अब सचमुच प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। तो दूसरा बाबा को याद करने का तरीका है संबंधों से, और उसको सहज करना है तो रोज बाबा को चिट्ठी लिखो। एक जैसे पुराने जमाने में होता था, जब बच्चे की चिट्ठी मां बाप को आती थी तो मां बाप कितना खुश होते थे, बार बार उस चिट्ठी को पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, उसमें इतना रस नहीं है। जो कागज की खुशबू आती थी उसमें, उस कागज में उसकी तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सारा व्हाट्सएप इधर से SMS इधर से उधर, उधर से इधर चल रहा है। तो पहले जमाने में क्या होता था, खत का बड़ा महत्व है। तो रोज यहां बाबा को खत लिखना है, सब संबंधों से खत लिखेंगे। कैसे खत लिखेंगे? कैसे खत लिखेंगे? मान लो अब बाबा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, है ना, तो बाबा को कैसे खत लिखेंगे? आप अपने पिताजी को कैसे खत लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर? आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। तो आप क्या लिखेंगे? मेरे प्यारे शिव बाबा, परम प्यारे शिव बाबा, क्या लिखेंगे? ओम शांति लिखेंगे ना। उसके आगे क्या लिखेंगे? मैं आपकी लाडली संतान, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, आपकी आपने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। कौन सी संपत्ति है? बच्चे का, बच्चे की आंख कहां होती है? बाप की संपत्ति पर ही होती है ना। तो यहां बाबा ने हमको संपत्ति कौन कौन सी दे दी? ज्ञान की संपत्ति दे दी है। अब ज्ञान में भी कौन कौन सा ज्ञान दिया उसको आगे लिस्ट निकालो। स्वयं का ज्ञान दे दिया, ओहो मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, मेरी मृत्यु होती नहीं है, मेरे में इतनी ताकतवर दी कि मैं जब चाहे श्री से डिटैच हो सकती हूं, जब चाहे श्री में आ सकती हूं। कितना अच्छा मेथड बता दिया, रियलाइजेशन करा दिया कि मैं आत्मा सचमुच एक उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूं, परमात्म शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मैं जैसे खुशी का देवता हूं, खुशी का, खुशी की देवी हूं, कितने अनेक प्रकार के टाइटल दे दिए। तो जब आप यहां से जाने के बाद सेंटर में जाने लगेंगे तो जो मुरली सुनेंगे ना उसमें बाबा सर्व संबंधों की अनुभूति कराएगा। मुरली में बाबा कैसे हमारा टीचर भी है, कैसे वो हमारा साजन भी है, कैसे वो हमारा पिता भी है, कैसे वो हमारा सतगुरु भी है, कैसे वो हमारा धर्मराज भी है। हर संबंधों का अनुभव मुरली से होने लगेगा। लेकिन उसे एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो नियम प्रमाण नहीं कि गे और सुन के रागे नहीं, एक है केवल गे बैठे सुन के आगे काम पूरा, वो है भक्ति मार्ग, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का फल अब भगवान ज्ञान देने आया हुआ है, ज्ञान माना समझ। इतना कीमती टाइम आप निकाल के आए हैं मुंबई से, अपने काम धंधे छोड़े हैं, कोई बहाना भी लगाया होगा, झूठ भी बोल के आए होंगे, अब इस टाइम को मैसेज जाया कर दें, खर्च कर दें तो क्या कहेंगे उसको। तो इतना टाइम कीमती निकाल है तो हमको उसी तरीके से यूटिलाइज करना है इसका, नियम अनुसार नहीं, कायदे प्रमाण। केवल नियम निभाने वाले बनना है, उसको निभाना है, दिखावे मात्र नहीं है। केवल हम सफेद कपड़े पहने ब्रह्मा कुमारी में होके आगे बैज भी लगा लिया, हम तो भाई ओम शांति के हो गए, नहीं। एक आंतरिक परिवर्तन की अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आज से सचमुच मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, मैं तो टोटली बदल गया हूं, हमारा एटीट्यूड ही बदल गया, देखने का रवैया ही बदल गया है, दृष्टिकोण ही हमारा बदल गया है। तो बाबा को सर्व संबंधों से लिखने की एक आदत डालनी है, सबसे सहज ही होगा ये। आप बैठेंगे ना, अगर बिना विचार किए बैठ के कि मैं बाबा को याद करता हूं तो मन जरूर बटेगा। और जब आप लिखेंगे बाबा को, लिखना भी एक बहुत शक्तिशाली योग है। जब बच्चा मां को खत लिखता है तो लिखते लिखते कौन याद आता उसको, मां याद आती है, उसकी पालना याद आती है, उसको लिखते लिखते मां के प्रति उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और मां भी जब पढ़ेगी तो क्या होगा उसकी आंखों में भी, तो कितना प्यार भरा वो योग होगा। जब हम बाबा को पत्र लिखेंगे कि बाबा आप हमारी मां हो, तो कैसे आंखों में आंसू आ जाएंगे, कैसे आपने हमारी पालना की है, कैसे हमारी परवरिश की है, इतने ज्ञान रत्नों से हमको श्रृंगार दिया है, मैं उसकी सजनी हूं, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं, वो शिव है हम उसकी पार्वती हैं, ये सारे ज्ञान के रत्न आपको बाद में मुरली में मिलेंगे सारे। वो सच्चा हमारा साजन है, हम उसकी सजनी है। अब एक सजनी साजन को पत्र लिखेगी तो कैसे लिखेगी, किसी का पहले लव मैरिज हुई है किसी की तो पत्र लिखा होगा ना पहले, तो कैसे लिखते थे। तो आज से हमारी लव मैरिज किससे होगी, भगवान से होगी। तो कैसे पत्र लिखते हैं, शुभ शुभ के लिखते हैं, घर में भी बैठेंगे तो कहां बिस्तर के अंदर से भी लिखते रहते हैं, ऐसे फिल्म में दिखाते कि नहीं, तो ऐसे घर जाके भी ऐसे करना, रजाई के अंदर में बैठ के पत्र लिखने का, भगवान को खत लिख रहे हैं, किसको, अपने साजन को लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, मेरे परम प्रिय साजन आप कितने सुंदर सलोने साजन हो, मैं आपकी सजनी हूं, आपने मुझे चुन लिया, मैं कितनी धन्य धन्य होगी, क्या आपकी दृष्टि मेरे पर पड़ी, कितना योग्य समझ लिया कि स्वयं भगवान ने हमको अपना बना दिया, उसकी मैं सच्ची सच्ची पार्वती हूं, सच्ची सच्ची सीता हूं, मैं ऐसी सीता हूं कि वो राम मेरे बिना रह ही नहीं सकता अभी, जैसे वो राम दिखाते हैं ना जंगल में कैसे भटकता था अपनी सीता को ढूंढने के लिए, तो भगवान ने भी हम सब सीताओं को ढूंढने के लिए इतने सालों से, कितने साल से, 36 से काम कर रहा है, अब इतने साल से ढूंढते ढूंढते अभी आप सीताएं मिली हैं उसको आगे, तो कितना प्यार उमड़ना चाहिए कि उसको कितना प्रयास करना, उसने आपको ढूंढने के लिए कितने लोगों को लगाया हुआ है, कितनी दीदियों को लगाया हुआ है, कितने क्लास वाले भाई बहनों को लगाया हुआ है, ढूंढ ढूंढ के आपको बोल बोल के तैयार करके करके आखिर भगवान की पार्वतियां आज यहां पहुंची हैं, भगवान की सच्ची सच्ची सीताएं आज पहुंची हैं, तो कितना प्यार उमड़ना चाहिए। तो सारा लिखना है कि मैं आपकी सजनी हूं, फिर मैं आप टाइम स्पेंड कहां कर रही हूं, मैं आपको याद करने में या आपकी शिक्षाओं को पढ़ने में टाइम स्पेंड कर रही हूं, या कहीं और टाइम स्पेंड कर रही हूं, या व्हाट्सएप चलाने में टाइम स्पेंड कर रही हूं, या किसी के और साथ में बातचीत करने में लगी हुई हूं, क्या मैं उसकी सच्ची सच्ची सजनी हूं। तो संबंध निभाना बड़ा आसान काम है, जैसे लौकिक में संबंध निभाते हैं, अब उसको परिवर्तन करने, डाइवर्ट कर देना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें रहना घर में है, सिर्फ बुद्धि योग से मुझे लगाना, बुद्धि योग से याद करना है, यहां दिखावे की बात नहीं है। और जब ये आदत पड़ जाएगी हमको लेटर लिखने की, तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर मन बुद्धि अपने आप विचार करना आरंभ कर देंगे, नहीं तो मन बुद्धि हमारा जड़ हो जाता है, एकदम सोचता नहीं, निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे हम मेडिटेशन में बैठेंगे बस दो मिनट तो फ्रेश रहेगा और तीसरे मिनट में नींद आ जाएगी, क्योंकि मन को हमने काम नहीं दिया। तो अंदर इंद्र से बातें करनी है कि बाबा सचमुच आपने साजन मरकर मुझ सजनी का कितना श्रृंगार कर दिया, मेरी बुद्धि को कितना स्वच्छ कर दिया। तो संबंधों से याद करना उसको, बड़े प्यार से याद करना है, जैसे उसका दिल पिघल जाए एकदम। भगवान का दिल तो वैसे कोमल है बहुत, तो उसमें हमको जो फिर प्राप्तियां होने लगेंगी, जो उसका प्यार की बरसात होने लगेगी, अच्छे अच्छे विचारों की टचिंग होने लगेगी, वो ही वास्तव में उसकी मदद है। जब भी समय आने पर कोई समस्या आ रही है, उसमें जैसे रात को प्रश्न पूछा था ना कि कौन सी शक्तियां कौन से समय में, जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो फिर समय पर ज्ञान काम ही नहीं करता है, क्योंकि हमने उस पर अटेंशन नहीं दिया है। तो देखना भगवान का मिल, भगवान से हमको क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, कौन कौन से उसके खजाने हैं, उसको अपने पास नोट करना है। बताया ना, स्टूडेंट लाइफ बन के हमको जीना है तो घर में जाकर एक खाना बना देना है ना, कि ये मेरा एक लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी तैयार कर देनी। घर में थोड़ा विरोध भी होगा, होता है, किसी किसी का विरोध होता है, और जिसका विरोध होता ना वो उतना भाग्यशाली है, जिसको परिस्थितियां आती है उतना भाग्यशाली है। क्यों? उतनी तड़फ ज्यादा बढ़ती है। जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं है, विरोध नहीं है, माना उसका पुरुषार्थ भी कम है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां आनी ही चाहिए, परिस्थितियां आना निशानी है आगे बढ़ने की। ब्राह्मण जीवन की एक भी उपलब्धि है, परिस्थितियां आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं जो बिना परिस्थिति को यहां पहुंच जाता है, बाबा का बन जाता है। जब हम इस संस्था में बाबा से हमको ज्ञान मिला था तो उससे हमारी, अब शॉर्ट में बता, वैसे तो लंबा अनुभव है, शॉर्ट में बता देता हूं, तो उसमें 24 एज थी, तो उसमें हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी और पिताजी ने हमको छुट्टी दे दी कि आप अपनी मर्जी से एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे, हम टोटल 4 भाई हैं, तो जो बड़े 3 भाई थे उनको तो पिताजी ने 20 साल की शादी में, 20 साल की उम्र में शादी कर दी उनकी, और पिताजी हमारे थोड़े एकदम क्या थे समझ गए एकदम बड़े कड़क स्वभाव के थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। जिंदगी में हमने पिताजी को कभी भी ना नहीं किया, कभी भी ना किया माना गए काम से, कभी ना नहीं किया। और पिताजी तो इतने कड़क थे कि जो हमारे बड़े भाई थे उनको तो उनकी घरवालियों के सामने भी पिटाई कर देते थे हाँ भाई साहब लगा लो, लेकिन लेकिन संस्कार ऐसे थे कि भाई चू नहीं करते थे, ऐसे पुराने जमाने के संस्कार थे, भाई चू तक नहीं करते थे। लेकिन आज के जमाने में उल्टा हो गया है सारा काम। तो खैर, तो उनकी तो शादियां कर दी, और चौथे नंबर पर हमारी सिस्टर थी तो उसकी शादी कर दी, तो हम 2 साल तो वैसे बच गए। और हमने पिताजी को बोला था जब तक मैं अपने पांव पर स्टैंड नहीं हुआ तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, और स्टैंड तो मैं जल्दी हो गया। और जब पिताजी ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से शादी कर लेना, तब तो हमको ज्ञान भी नहीं मिला था। तो हमको एक हमारा दोस्त ले गया अमृतसर में, हम सर्विस करते थे सोनी कंपनी में, तो वहां से हिमाचल में काफी दूर 300-400 किलोमीटर दूर, कि मैं आपकी शादी ना अपने गांव में कराऊंगा। तो हमने बोला ठीक है, तो हमारा वैसे मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसने हमारे से जबरदस्ती एक सोने की अंगूठी भी बनवा ली, घर वालों को कोई इतला नहीं दी हमने, वो अंगूठी भी बनवा ली और हमको लेके चला गया हिमाचल में, और वो अंगूठी पहना के आ गया और कपड़े लेन देन भी कर लिया बिना बताए घर वालों के। लेकिन मन में ना एक डिससेटिस्फेक्शन थी, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मना अपनापन महसूस होता ही नहीं था कहीं भी। तो खैर हम जो तो आ गए वापस, फिर पिताजी को पता चल गया, तो पिताजी ने आगे यात्रा चालू हो रही है, आगे क्यूरियोसिटी तो आगे बढ़ेगी। तो आगे पिताजी ने हमको कहा चलो ठीक है, लेकिन हमारे भाई बोलते नहीं इतनी दूर ठीक नहीं है, तो हमने बोला ठीक है छोड़ दो, इतनी दूर हमको भी ठीक नहीं लगता है। तो उधर से उनका भी संदेश आया भाई इतनी बहुत दूर पड़ता है, हम नहीं करेंगे शादी। हमने बोला ठीक है, तो पिताजी वहां से जाके अंगूठी बूटी लेके आगे उनकी तो फिर भी ऐसे हमारे 12 रिश्ते हुए एक एक करके, लेकिन कहीं भी हमने हाँ नहीं किया। फिर क्या हुआ बीच में, पिताजी ना बहुत तंग हो गए, बोला दूसरे जो लड़के हैं ये मेरे एक बार कहने से उन्होंने देखा भी नहीं घरवाली को और शादी कर दी और इसने तो नाक में दम कर दिया है। और गांव में हमको ना सोचते थे एक ना लड़का आपको बस बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा लड़का ही है। और फिर जब शादी के लिए हम मना कर देते थे तो गांव वाले ताना मारते थे कि सबसे खराब लड़का तेरा यही निकला है। तो पिताजी को अंदर में बड़ा दुख होता था क्योंकि गांव में इसलिए अच्छा कहते कि हम किसी के काम के लिए मना नहीं करते थे और जाति पाति भेदभाव हमारे में बचपन से नहीं था, चाहे वो किसी भी हरिजन हो या परिजन हो कोई भी हो, हम तो हरेक के घर में चले जाते थे। तो खैर ऐसे एक बार क्या हुआ, बहुत किस्से हैं लेकिन मुख्य किस्सा सुना देता हूं। तो एक बार पिताजी ने हमारी एंगेजमेंट कर दी, तो एंगेजमेंट कर दी तो हमको पिताजी ने कहा कि आप संडे के टाइम में संडे को आ जाना गांव में। हम रहते थे अमृतसर में और एंगेजमेंट जो थे रिश्तेदार वो दिल्ली के थे और जो देखना था वो हिमाचल में करना था, उनका भी गांव हिमाचल में, हमारा गांव भी हिमाचल में, तो वहां देखना था एकदम। तो हमको पिताजी ने कोई बुधवार या गुरुवार का दिन था, पिताजी अमृतसर में आए और हमको कहा कि आप संडे को आ जाना और ऐसे देखना है। और तब हमको ज्ञान मिल गया था। अब ज्ञान मिल गया था, ज्ञान तो हमारी बुद्धि में एकदम बैठ गया सीधा ही। और उस ज्ञान मिलने के पीछे भी दूसरी स्टोरी है, वो भी सुनानी जरूरी है। वो हमारा बड़ा भाई है, तो हमारा जो बड़ा भाई है दूसरे नंबर का शादीशुदा है, उसमें थोड़ा भक्ति के संस्कार ज्यादा थे, हमारे में भक्ति के संस्कार इतने थे नहीं थे क्योंकि हम कोई जाति पाति हिंदू मुस्लिम अच्छा हम तो अंदर में ये रहता कि सभी एक जैसे क्यों नहीं है। तो उसमें भक्ति के संस्कार बहुत थे, तो उसने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस करते करते उसने भक्ति बहुत ज्यादा आरंभ कर दी। तो इतना बड़ा शोरूम था तो आधा शोरूम उसने ना भक्ति का ही भर दिया, वहां सभी देव देवताओं के चित्र लगा दिए, वहां आधा दिन उसका पाठ पूजा करना, और फिर बड़ा बड़ा एकदम दाढ़ी रख ली उसने, टीके लगा दिए, पूरे बड़े बड़े बाल हो गए, और उसकी मालाएं क्या कहते हैं उसके रुद्राक्ष की मालाएं, और एकदम जैसे महामंडलेश्वर की तरफ बड़ी बड़ी आंखें हो गई, और साधना में रहता था और बिजनेस की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। तो ऐसे करते करते वो इतना भक्ति में चला गया कि साधु संतों का आना जाना चालू हो गया, उसके पास में सब शास्त्र पढ़ दिए, मंदिरों में जाना, झाड़ू पोछे लगाना, माना उससे भी भगवान की खोज की, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो फिर उसका इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो गई कि वो रात को शाम जैसे होती थी तो घर से निकल जाता था सीधा जंगल में शमशान घाट पर, और पूरी रात शमशान घाट में वो साधना करता था, पूरी रात अकेला बैठ के, और सवेरे वहां जलते हुए मुर्दे की राख से स्नान करके वापस लौटता था। ऐसी कड़ी साधना थी। तो ये देख के हमको लगता था ये इतनी साधना कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक तरफ दुख होता था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, और दूसरी तरफ ये होता था कि हम इतने नलायक हैं कि भगवान को थोड़ा बहुत भी नहीं याद कर रहे हैं। तो खैर लास्ट में वो घरवा छोड़ के जाने वाला था, तो जैसे उसको घरवा छोड़ के जाने वाला था घरवाली तो बड़ी परेशान होगी, तीन बच्चे उसके, तो माँ ने बोला मैं तो चला जाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा चलो ठीक है आपको जाना तो जाओ बोले, लेकिन एक मंदिर है वहां जाके आप थोड़ा परिक्रमा करके वहां से फिर चले जाना। तो वो भाई और भाभी दोनों गए मंदिर में, तो वहां प्रदर्शनी लगी हुई थी बाबा की प्रदर्शनी, तो वहां छोटी छोटी बहनें सुना रही थी ज्ञान। अब इसको शास्त्रों का बहुत अहम था, सारे पढ़े हुए थे, तो बहुत वाद विवाद भी किया होगा, लेकिन बहनों ने किताब दी साप्ताहिक पाठ्यक्रम, आप एक बार पढ़ के देखो आप। तो भाई वो किताब लेके आए, चलो ठीक है इसको पढ़ के देखो, तो आते सारे एक दिन में सारी किताब पढ़ दी और सारा उसको क्लियर हो गया कि सचमुच हाँ भगवान का अवतरण हो चुका हुआ है। तो अगले दिन में वो फिर उसी स्थान पर गया जहां प्रदर्शनी लगी थी, तो प्रदर्शनी तो थी नहीं, वहां से बहने जा चुकी थी एक ही दिन के लिए थी, तो वहीं बैठ के फूट फूट कर रोने लगा कि बड़ी मुश्किल से थोड़ी आशा की किरण दिखी थी लेकिन फिर भी यहां से गायब हो गई। फिर वापस आया, फिर बहुत रोया, फिर किसी ने बताया कि आप यहां से इतनी दूर जाओ तो एक सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहां आपको एक ज्ञान मिलेगा। तो वहां से वो 80 किलोमीटर दूर गया, तो वहां से आश्रम में परिचय मिला कि आपके नजदीकी दूसरा सेवा केंद्र है, तो फिर वहां कॉन्टेक्ट किया, तो वहां से 40 किलोमीटर जहां ये भाई रहता था 40 किलोमीटर डेली बहने उसको कोर्स कराने के लिए आती थी, ये नहीं जाता था, बहने उसको कोर्स कराने के लिए 40 किलोमीटर आना 40 किलोमीटर जाना, और हिमाचल में वो पहाड़ी सफर। तो बहनों ने एक एक भाई को निकालने के लिए बाबा ने बहनों को कैसे निमित्त बनाया, तो जैसे उसने हमको एक किताब दी और हमने पढ़ी सारा बुद्धि में बैठ गया। अच्छा फिर उसके बाद तो हमको ज्ञान मिल गया, और फिर भाई ने हमको फोन किया कि मैं अभी सारा बिजनेस मिट रहा हूं तो मैं क्या आपके पास वापस आ जाऊं,
तो अंदर से तो मैं मना कर रहा था कि मेरे पास नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी रख ली थी, हमको तो उसी से नफरत थी सारी। तो मैं बोला मेरे पास आया तो हमको ये बना देगा, ऐसा बना देगा, क्योंकि बड़ा भाई है, हम तो मना नहीं कर पाएंगे उसको। संस्कार ही ऐसे थे कि बड़ों को मना करना ही नहीं है। तो खैर वो वापस हमारे पास आ गया, हमने बोला हाँ आ जाओ आप। तो फिर वापस हम इकट्ठे रहने लगे, तो हमको जैसे उसने किताब दी तो सारी हमने पढ़ी और सारा क्लियर हो गया, तो हम धीरे धीरे ज्ञान में चल पड़े। अब इस बात का हमारे पिताजी को पता चल गया, पिताजी को पता चल गया तो पिताजी आए तो बोला ऐसे आप संडे को आना, आपकी ऐसे एंगेजमेंट की हुई है। तो हमने बोला ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन अब हमको तो ज्ञान पक्का हो गया था एकदम। तो पिताजी वहां से मैसेज दे के गए और हमने पीछे से उनको लेटर लिख दिया कि अभी हम नहीं आएंगे इतना, क्योंकि अभी मैं अपने पांव पर स्टैंड नहीं हूं। तो जैसे पिताजी को लेटर मिला, अगले दिन में पिताजी आए और जहां हम सर्विस करते थे, और सीधा उन्होंने अपने मारी, क्या किया होगा, पालना अच्छी तरह से कर दी और सबके सामने अच्छी तरह से धुनाई कर दी। नए नए थे हम, और नशा तो इतना ज्ञान का, नए नए तो बात मत पूछो। हमने बैज लगाया हुआ था, सबके सामने यहां से पकड़ी कमीज और बैज कहां पता नहीं कहां फेंका, और हमारी सारी कमीज ये फट गई। तो सारे वो बहुत बड़ा शोरूम था, सब लोग इकट्ठे हुए, ये क्या हो रहा है, इस लड़के ने तो ऐसा वैसा कोई काम किया ही नहीं है, और इसकी ऐसी ऐसी धुनाई क्यों होगी, क्या खराब काम कर दिया इसने। तो फिर सबने बताया कि ये शादी के लिए मना कर रहा है। तो फिर सबने समझाया पिताजी को, पिताजी को कि भाई ऐसे ऐसे, हमको भी समझाया कि भाई तेरी उम्र नहीं है ज्ञान ध्यान की, ये तो बाद में होता रहता है 60 साल के बाद, सब समझाने लगे। तो खैर अब ज्ञान तो बुद्धि में बैठ चुका था अच्छी तरह। पिताजी बोले अगर तुम मेरे साथ नहीं ना चला तो मैं यहीं सबके सामने प्राण त्याग दूंगा। अब धर्म संकट में फंस गया। हमने फिर अपनी टीचर बहन को फोन किया कि बहन जी ऐसे ऐसे है कि हमारे पिताजी आए हमको लेने, बोला तुमको साथ में चलना है। तो बहन जी कहते तुम बिल्कुल नहीं जाना, तुम अगर गया तो तुम तो घर में इतने लोग हैं, तुम एक का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो घर में सबका मुकाबला कैसे करेगा। तो हमने बोला ठीक है, फिर हमने पिताजी को बोला हम बाद में आएंगे, बोला नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला बहन जी मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं 100% पक्का निश्चय करके जा रहा हूं कि आऊंगा वापस। तो खैर पिताजी हमको ले गए, रात को सब इकट्ठे हुए गांव में, तो सारे परिवार वाले कहते हैं, पिताजी कहते हैं शादी करनी कि नहीं करनी। हाँ मैं बोला मैं करूंगा, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं हूं, मैं फंसने वाला नहीं हूं, आप तो मैं शादी करूंगा, आप चलो सवेरे देखने के लिए। अब मरता क्या नहीं करता, रात सिर पर थी, अगर रात को मैं गड़बड़ करते तो मेरी चटनी बना देते रात को वो दो। खैर सब लोग तैयार इकट्ठे सवेरे। फिर मैंने पिताजी को बोला कि मैंने जिंदगी में सारी बातें आपकी मानी हैं, अभी आप मेरे केवल एक ही बात मान लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं शादी के लिए, शादी तो मैं जरूर करूंगा ही, लेकिन मैं 4 साल बाद शादी करूंगा, अभी नहीं करूंगा जब तक मैं अपने पांव पर स्टैंड नहीं हुआ। अब लड़की वाले थोड़ा 4 साल रुकेगा कोई भी। तो पिताजी बोले नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अगर वहां मुंह खोला मैं सबके सामने तेरी पिटाई कर दूंगा उधरी। तो उस समय तो बाबा का इतना फोर्स था, इतना प्यार था, इतना करंट था कि उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ योग लगा रहा है। तो खैर बैठे सभी, हमारे पिताजी, बड़ा भाई डॉक्टर है, उसकी घरवाली, माताजी, ऐसे 5-6 लोग इकट्ठे हुए और लड़की वालों के घर में पहुंच गए। अब सब लोग बैठ गए जी, इम्तिहान का वक्त आ गया, सब बैठ गए, कोई कहां से आया कोई कहां से आया। तो फिर मुझे बोला आप लड़की से बात कर लो, हमने बोला ठीक है जी बात कर लेते हैं। तो हम बात करने गए, तो मैंने बोला देखो पति को क्या कहा जाता है, परमेश्वर। अब बने तो नहीं थे लेकिन पहले से हम उसको समझा रहे हैं परमेश्वर कहा जाता है। तो मैं बोला बात मानेंगे नहीं सारी, बोले हाँ मानूंगी सारी बात मानूंगी। तो मैं बोला देखो मेरी तो हाँ शादी के लिए, आप भी हाँ कर देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे लेने देने तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कहना मैं 4 साल बाद शादी करूंगी। तो बोला ये तो नहीं मैं कहूंगी। तो मैं बोला तुम पहला स्टेप यहां फेल होगी तो जिंदगी कैसे निभाएगी मेरे साथ। खैर ये सारी बाबा की कमाल थी, नहीं तो हमारी बुद्धि तो बिल्कुल चलती नहीं थी। लेकिन उसका बनने के बाद बहन जी ने बोला ना, वो सारी विशेषताएं वो भर देता, उसको पता कौन से ईंट को कौन से रोड़े को कहां लगाना है। तो खैर जी हम वापस लौट के मिल के आए, सभा में बैठ गए। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ, मैं बोला ठीक है जो लेना लेना कर लो, फाइनल हो गया है, लेकिन एक ही शर्त है हमारे के 4 साल बाद शादी करूंगा। पहली बारी हमने अपनी जवान पिताजी के सामने खोली हुई, पता नहीं कैसे शक्ति आ गई वो। तो पिता है जी, हाँ बाबा जी से भाई, बाबा ने शक्ति दी तो बाबा ने वो शक्ति दी, फिर बाबा ने मार खाने के लिए भी शक्ति दे दी थी हाँ मैं बता दू तो फिर वहां क्या हुआ उसके आगे, पिताजी ने हमको जैसे तो उनके पांव के तले की जमीनी खिस गई हो। तो वहां से उन्होंने हमको समझाया, लड़की का पिता बहुत गुस्से हो गया। खैर पिताजी ने वहां से हमको पकड़ा, फिर मकान के पीछे ले गया। वहां हमको थोड़े समझाते रहे, देख बेटा अभी बाद में कौन पूछेगा तुमको, बुढ़ापे में कौन देखेगा तुमको। अच्छा तुमको जो भी चाहिए मैं बिजनेस करा दूंगा, प्रॉपर्टी तुमको मैं सारी दे दूंगा। समझाते रहे, लेकिन उसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ना मुझे पकड़ के रखा हुआ है और पूरा ब्राह्मण परिवार मेरी परिक्रमा कर रहा है और शत्रुशायद जैसे बन के बाबा मेरे सिर पर है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना दिल चीर के दिखा दूं कि मेरे अंदर जैसे हनुमान का जो दिखाते ना, ऐसे लगे सच में। और मैं बाप पिताजी को बता रहा हूं कि देखो मेरा दिमाग भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है ना, और सचमुच भगवान आ गया हुआ है और आप भी इस ज्ञान को ले लो। हम उनको अपना ज्ञान सुना रहे और पिताजी अपना काम कर रहे। तो बोले तो पहली बारी जिंदगी में पिताजी को हमने रोते हुए देखा। जिंदगी में इतनी मौतें भी हुई, कुछ भी हुई, लेकिन रोते कभी नहीं देखा, पहली बारी रोते हुए देखा। पिताजी ने अपनी पगड़ी उतार के हमारे पांव में रख दी और इतना रोए हमारे दिल में कोई, इसने ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे तुम अचल अडोल आत्मा है। और इतनी परमात्म प्यार की अनुभूति हो रही थी, इतनी परमात्म प्यार की अनुभूति कि संसार के सुख सचमुच क्षण भंग हो रहे। वो जो इंद्र सुख का पल था, वो जो 2-5 सेकंड थे, उसके आगे सारे संसार के सुख पीके थे। पिताजी कहते मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। मैं बोला पूरे संसार की दौलत इकट्ठी करके मेरे पांव में रख दे, मैं उसको ठोकर मार दूंगा। क्योंकि वो परमात्म प्यार का जो सुख है, जो अतिंद्र सुख है, वो इस संसार के सुखों में बिल्कुल भी नहीं है। भले वो इस जिंदगी ब्राह्मण जीवन में 2 सेकंड का मिले, वो 2 सेकंड का सुख भी हमारे ब्राह्मण जीवन को पंख लगा देगा, उड़ा देगा। इसलिए बाबा को, तब से हमने फिर बाबा को अपने संबंधों से चिट्ठी लिखना शुरू किया था। इसलिए हमने बताया कि बाबा को सबसे सहज याद करने का तरीका है उसको रोज चिट्ठी लिखो, अपने दिल के हाल चाल सुनाओ। दूसरों को समस्या सुनाएंगे, 10 समस्या और खड़ी लेके आ जाएंगे। अपने दिल का हाल चाल उसको सच्चे मन से सुनाओ। क्यों नहीं वो करेगा, वो हमारे लिए है, भगवान हमारे हैं जी। लेटर टू गॉड, हाँ, तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। तो इस नॉन बीके में और एक सक्सेसफुल है, उनको कईयों के काम हो जाते हैं। क्या होता है उसमें हमारी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, अपने आप नए विचार आने लगते हैं, एक हमारे जीवन में एक अचानक परिवर्तन, हमारे एक्शन सारा बदल जाता है, धर्म कर्म हमारा नजरिया बदल जाता है, वो स्वतः उसकी परमात्म प्यार की अनुभूति होने लगती है। ऐसे महसूस होते थे जैसे मैं परमात्म शक्तियों के नीचे चल रहा हूं, उसके प्यार में पल रहा हूं, एक जीवन टोटली चेंज हो गया है। इसलिए बाबा को दूसरा है, बाबा को सर्व संबंध से अपना पत्र लिखो और ये बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ करना है। ये स्वच्छ करने का एक ही तरीका है, चिंतन को बढ़ाना है। अगर हमने अपने चिंतन को नहीं बढ़ाया तो दूसरे अनेक प्रकार का जो नेगेटिव चिंतन करने की हमने आदत बना रखी है, वो आदत हमको हमेशा चिंता में धकेलती रहेगी, वो चिंता में जलाती रहेगी। चिंताएं हमें बाहर से नहीं आती है, कोई भी चिंताओं को हमने पकड़ के रखा हुआ है। अभी नई चिंता क्रिएट करनी है, कौन सी, चिंतन करने की चिंता क्रिएट करनी है, अपने मन बुद्धि को चलाना है। आज हम इस यज्ञ में देखते हैं इतने बड़े बड़े भाई बहने क्लासेस कराते हैं, कैसे कराते हैं वो, उनको सोचना नहीं पड़ता, अभी नेचुरल जीवन हो गया उनका। दादियों का जीवन हमारे आगे पीछे क्या था, चलती प्रति लाइब्रेरी की तरह था, वो कहती नहीं थी कुछ भी। आज हम बड़ी दादियों के आगे जाते हैं दृष्टि लेने के एक पल के, किस लिए, उनका जीवन ही ऐसे हो गया, चिंतन उनके मन में दूसरा को विचार ही नहीं है। अभी 99% हम अनावश्यक विचारों को अपने मन बुद्धि में रखा हुआ है, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, वही हमारा योग लगा हुआ है और वो हो भी नहीं रहा है हमारे पास। जो हमारी ऐसी वैसी चीजें होनी चाहिए वो हो नहीं, सभी अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अज्ञात सा भय बना हुआ है, उस अज्ञात भय के साए में हमारा जीवन चल रहा है। अरे जो हमें को मिला है, हमें जो प्राप्ति हुई है, इतना सुंदर श्रेष्ठ शक्तिशाली ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को खोलो, उस ज्ञान की किताब को खोलो, पढ़ो, उसको पन्नों को पलटो, अपने चिंतन को चलाओ, अपनी किताब तैयार करो। एक जो बहन जी ने बताया लेटर टू गॉड, रोज एक पत्र, एक पेज बाबा को पत्र लिखो जरूर, अपने दिल का हाल चाल सवेरे से शाम तक उठते करो, बाबा गुड मॉर्निंग दिल से करो, एक आर्थ पुकारा जो उसका सिंहासन ऊपर से हिल जाए। तो संबंधों से उसको याद करना है और जो विधि बताए पहले वाली आसन, अपना ये आसन नहीं छोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी सूक्ष्म है, ये दिखाई देने वाली नहीं है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो पहले ये प्रैक्टिस करनी है कि मैंने इस सिंहासन को अपना बनाया है, ये सिंहासन मेरा अपना है, इस सिंहासन पर मुझे और किसी को नहीं बिठाना है सिवाय भगवान के, मैं और मेरा बाबा यहां बैठे हुए, इतना प्योर से आसन होना चाहिए। और घर में किसी को बुलाते हैं, कोई VIP को बुलाते हैं, हमारे घर की स्वच्छता कितनी होती है, कितना ख्याल रखते हैं उसको। ये घर किसको दे दिया अभी, ये भगवान को दे दिया है। भक्ति में तो कहा तन मन धन सब तेरा, अब प्रैक्टिकल में तन ये एक मंदिर है ये, अब इस मंदिर की स्वच्छता कैसे रखेंगे, मंदिर में कूड़ा कचरा होता है, कितने ध्यान से हम किसकी साफ सफाई करते हैं, कहीं मक्खी मच्छर नहीं होता है, अगर थोड़ा सा भी कचरा आ जाए तो क्या होगा, मक्खी मच्छर होता है। तो ये मंदिर है, इस मंदिर के मैं आत्मा रूपी मूर्ति बैठी हूं, और अंदर में कौन से विचार भर के रखे हुए हैं, वो विचार ही मक्खी मच्छर बनकर मुझे काटते रहते हैं। तो कितने शुद्ध विचार हमको अंदर में भर लेने चाहिए। तो स्वयं की क्लीनिंग करनी है, स्वयं की स्वच्छता करनी है, अपनी बुराइयों का दान दे देना है, विकृतियों का दान कर देना है। इसलिए कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो यहां दान किस चीज का दिया जाता है, पैसा दान करना बड़ी बात नहीं है, वो तो दान करना हो तो सफल करना वो भी है, लेकिन अपनी बुराइयों का दान देना सबसे बड़ा दान है ये। जिनसे हमको प्यार हो गया हुआ है, जिनको हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको छोड़ना है, और छोड़ना भी नहीं है वास्तव में, वो स्वतः छूटेंगी जब हम नई आदतों का निर्माण कर देंगे, पुरानी आदतें स्वतः किनारा कर देंगी, उनके बारे में सोचना नहीं है। अब कोई हमारे सामने आ रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप ही चला जाएगा। अगर हम उसको ध्यान देंगे, उसके बातचीत करना शुरू कर देंगे, तो कल को फिर वो गपशप मारने आ जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट कर देगा, क्योंकि हमने खुद ही उसको आने के लिए अपना टाइम दे दिया है। तो हमें अपने इस मंदिर के अंदर इतनी स्वच्छता बनाए रखनी है कि स्वयं भगवान के विचारों का, उसके ज्ञान का अवतरण होने लगे, इसका शुद्धिकरण होने लगे। ये एक बर्तन है, ये रात को भी सुना ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। अब जब यहां से जाएंगे तो मुरलियां सुनेंगे, तो मुरलियों में ऐसे ऐसे महावाक्य आएंगे, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, इतना वो पावरफुल होता है। तो भगवान का भी ज्ञान निकालने का प्रयास नहीं किया होगा किसी ने, इसलिए तो बोल दिया। नहीं वैसे तो देखो जो फॉरेस्ट वाले होते हैं वो फॉरेस्ट वाले जो होते हैं वो तो करते हैं, जब बच्चा वो करते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो सोने के बर्तन में रखा है नहीं रखा, हाँ मिलता नहीं है, निकालेगा नहीं। लेकिन शेरनी अर्थात एक ताकतवर जानवर है वो, है ना, तो उसके पास जाने के लिए उतनी ताकत भी चाहिए। ठीक है आप बर्तन दो, फिर प्रयास दूसरा, पहला स्टेप तो बर्तन ही दे दो, सांप से पकड़ लेंगे। हाँ सही बात है। तो ये जो बर्तन है ना, इसको बड़ा स्वच्छ बनाना है, इसके अंदर अंदर हमको ऐसे वैसे विचार नहीं भरने हैं। कौन से विचार भरने हैं, पवित्र विचार, शुद्ध विचार, शक्तिशाली विचार, सुख देने वाला विचार, उमंग सा देने वाला विचार। और वो कहां मिलेंगे, वो संकल्प, वो खजाना कहां मिलेगा, मुरलियों में मिलेगा। मुरलियां तो सभी ने कभी तो थोड़ी बहुत सुनी होंगी ना, जो पहली बार आए। हाँ जो नहीं सुन रहे वो आप अभी से सुनना शुरू कर देंगे, सब प्रश्नों का हल उसमें मिल जाएगा। हमने जिंदगी में कभी किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि सारे भगवान सब प्रश्नों का उत्तर बता रहा है, उसमें हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हाँ जो प्रश्न दिया जाता है ना उसको छोड़ देने का, उसको पकड़ने नहीं, जिस प्रश्न का हमको उत्तर मिले पहले उस पर तो काम कर ले, और कोई प्रश्न प्रश्न ही रहेंगे उसका, उसी में ही शोभा है। क्योंकि ड्रामा ऐसा, जैसे रात को किसी ने पूछा ये ड्रामा 5000 वर्ष का ही क्यों है, है ना, अच्छा मान लो ये 10000 वर्ष का हो तो क्या वो प्रश्न चेंज हो जाएगा, प्रश्न तो फिर भी वही है, 10000 वर्ष का क्यों है। तो इन प्रश्नों से हमारा फायदा नहीं है कोई भी, हमको जिन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है उन उत्तर पर हमको काम करना है, उसमें फायदा है। उन प्रश्नों के जंजाल में हम फंस गए तो हमारी लाइफ तो ऐसे चली जाएगी, टाइम तो वैसे निकलता जाएगा, इतनी अमूल्य लाइफ है, हीरे तुल्य लाइफ है, और हम उसको ऐसे वैसे गवा दे। तो जो हमको भगवान से मिलता पहले तो उसको समेट लें, ऐसा ना कि ये भी आसे चले जाए वो भी आसे चले जाए। इतने वो हीरे, ज्ञान रत्नों के हीरे देने आया हुआ है, तो ऐसा ना कि अंत में सारे हीरे निकल जाए, हम एक एक हीरा करते रहते फेंकते रहे ऐसे, और अंत में पता चले सारे खत्म हो जाए। तो ये बाबा को याद करने का तरीका है, सर्व संबंधों से खत लिखना, उसको लिखेंगे सभी, कौन कौन लिखेगा हाथ उठाओ, बाकी नहीं लिखेंगे। हाँ प्रोजेक्ट किया, हम पहले यहां भी सुनाया था आपने,
हाँ हाँ
जी
जो भी है
पानी को चाश गुड विशेष हाँ जो घर में भोजन बनाते हैं पानी पीते हैं उसको चार्ज करना है क्योंकि माताओं की बड़ी जवाबदारी है। घर में जो भोजन बनाते हैं पूरा बाबा की याद में बना, ऐसा सोचना है कि ये परमात्मा का भंडारा है, शिव भोलेनाथ का भंडारा है, उसमें परमात्मा की नजर हर समय पड़ रही है, हम मैं उसकी याद में भोजन बना रही हूँ, उसकी सारी शक्तियां समा रही हैं, परमात्म शक्तियां सारे घर के कोने कोने में समाती जा रही हैं। आप मधुबन में आए, मधुबन की एनर्जी से स्वयं को इतना भर लो कि सारी एनर्जी घर में समा देनी जाके। ये योग करने का एक तरीका, जैसे आप घर में बैठे हैं ऐसे सोचना है कि मैं मधुबन में पहुंच गई हूं, बाबा के कमरे में बैठी हूं, बाबा की तस्वीर से हाथ निकला और सीधा मेरे सिर पर और सारी परमात्म शक्तियां मेरे में समा गई हैं, वहां से मैं उठा या उठी और सीधा शांति स्तंभ पर, सारी एनर्जी मेरे में समाई हिस्ट्री हॉल की, बाबा की कुटिया की, और एनर्जी लेके जैसे सारे घर के कोने कोने में समा गई है, वो भोजन में समा गई है, पानी में समा गई है, जो भी खाने पीने की सामग्री है, परमात्म शक्तियों से वो परमात्म एनर्जी, वो एनर्जी से वो सारी सामग्री जैसे फुल चार्ज हो गई है, तो हमारा फिर स्वभाव संस्कार भी नहीं, तो हमारा क्या होता है अगर हम ज्ञान में चल पड़े, पत्नी ज्ञान में चले तो वो ये सोचते पति भी ज्ञान में चले, ये सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा ज्ञान में, हमारे अपने आप पीछे सफलता पीछे पीछे आएगी, हम क्यों किसी के पीछे जाएं, अपने आप पीछे आएगी। जैसे एक बार घोड़ा था, किसने पाला था, बहुत अच्छा घोड़ा था, तो उसने राजा को बोला मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा, एकदम हिस्ट पुष्ट घोड़ा है, अगर उस घोड़े को किसने कंट्रोल कर लिया तो मैं इनाम में मैं घोड़ा दे दूंगा किसी को। तो राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास तो एक से बढ़िया एक उस्ताद है, घोड़े को कंट्रोल कर लेंगे। तो हर एक उस्ताद घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे जाता तो घोड़ा आगे पीछे से उसको टांगे मार के निकाल देता, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं जो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसा घोड़ा क्या कैसा आ गया। तो राजकुमार देख रहा, राजा का लड़का राजकुमार देख रहा था वो सारी हरकत को। तो वो घोड़े के पास गया तो जो घोड़े का मालिक था उसको बोला इसको इसकी दिशा चेंज कर दो। उसने दिशा चेंज कर दी घोड़े की और एक स्लांग मारी घोड़े पर बैठ गया और कंट्रोल हो गया। क्या उसमें क्या कारण होगा, कैसे होगा कंट्रोल, कैसे कंट्रोल हो गया, दिशा बदल दी। तो दिशा बदलने से क्या हुआ, क्योंकि अब उसकी परछाई आगे नहीं थी, अब उसकी परछाई पीछे थी। तो हमको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सब पीछे भागेंगे। हमको ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा भी ज्ञान में चले, मेरा पति भी ज्ञान में चले, मेरी पत्नी भी ज्ञान में चले, अपने आप आएंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। तो नहीं तो हम अपेक्षा रखते हैं इनको अच्छा चलना चाहिए, मेरे में 100 कमियां होंगी उसके बढ़ने करूंगा मैं, इनको अच्छा चलना चाहिए। है शुभ भावना दूसरों को अच्छा बनाने की, लेकिन पहले अपने को अच्छा बनाने की शुभ भावना रखेंगे दूसरे अपने आप ही अच्छा बन जाएंगे। इसलिए यहां का स्लोगन ही क्या है, यहां का नारा ही क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करने की यात्रा आज से आरंभ करनी है ना। ओम शांति।